તારીખ 4/9/1992 શ્રી પરમાત્મા પ્રકાશ ગાથા 43 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ગ્વાલિયરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 15
વિષય ક્યા હે અર્થાત ભૂતાર્થ દ્રવિશ કા વિષય હે પર્યાય કા વિષય કોણ હે કે ભૂતાર્થ દ્રવ્ય હે તો પર્યાય કા વિષય હે पर्याय के आश्रय से भूतार्थ विषय नहीं होता। पर्याय के आश्रय से भूतार्थ विषय नहीं होता, क्योंकि पर्याय खुद है भूतार्थ है, इसलिए वो भूतार्थ विषय नहीं होता। यह बात थोड़ी सूक्ष्म इसलिए है कि पर्याय खुद आश्रय करती है, फिर भी वो स्वयं का आश्रय नहीं करती है। सुगानी जी ने इस विषय पर एक सुंदर दृष्टांत दिया है कि यदि किसी पे अनहद प्रेम होता है, क्या बेहद प्रेम होता है, तो अपने आप को भूल जाता है। क्या होता है जिस पर प्रेम होता है ना, उसमें वो अपने आप को भूल जाता है। अपने आप को कैसे भूल जाता है कि कितनी भी प्रतिकूलता हो, कितनी भी प्रतिकूलता आ जाए वो गिनेगा नहीं। उतना प्रेम है कि अपनी प्रतिकूलता को वो गिनने वाला नहीं होता। इस तरह पर्याय है जो त्रिकाली का आश्रय लेती है, उसको त्रिकाली ध्रुव ग्रह के प्रति उतनी प्रीति होती है, उतना प्रेम होता है कि ऐसा पड़ा रहता है। वैसे आत्मा भी ध्रुव 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 पड़ा रहता है, मूल स्वरूप है, लेकिन तद्दन कुटस्थ है, पर्याय से भी कुटस्थ है ऐसा नहीं है। कथनचित किसी अपेक्षा से कुटस्थ है और कथनचित किसी अपेक्षा से परिणामी भी है। बंध और मोक्ष पर्याय है, बंध और मोक्ष है तो पर्याय है, तो निमित्त की अपेक्षा रखने वाली पर्याय है। बंध में कर्म का उदय का निमित्त है, मोक्ष में कर्म का अनुदय का निमित्त है, क्षय का निमित्त है। निरपेक्ष दृष्टि से तो आत्मा अपरिणामी है। देखो बार बार कहते हैं आत्मा अपरिणामी है। अभेद दृष्टि से आत्मा अपरिणामी है, कितने दफे कहा, ध्यान नहीं गया था लेकिन कहा तो है। ये प्रवचन बहुत साल पहले हुए हैं। और द्रवगुण पर्याय का भेद पाड़ने पर आत्मा में शुद्ध निरपेक्ष पर्याय है, इसलिए आत्मा परिणामी भी है। सिद्ध भगवंत के अनंत गुण में भी परिणमन हो रहा है, इसलिए आत्मा परिणामी है। लेकिन द्रव दृष्टि से अभेद दृष्टि से आत्मा अपरिणामी है। वो अपरिणामी शब्द का कितना प्रयोग किया है, एक पैराग्राफ लिया है। तो ये बात आगे गुरुदेव ने कही थी, समाज में उतनी प्रचलित नहीं थी, इसलिए यहाँ गुरुदेव ने निहाल भाई का जिक्र किया है। निहाल भाई अजमेर के थे, उतना परिचय दिया है गुरुदेव ने कि निहाल भाई मूल अजमेर के थे और पिछले करीब 1952 से करीब 64 तक 12-13 साल कलकत्ता में रहते थे। जी बना था क्या अच्छे, आपको मिले हैं क्या, अच्छा परिचय हुआ है आपको, अच्छी बात है। पिछले वो 5 साल हर साल एक दफे सोनगढ़ आते थे, तो पिछले 5 साल में हमारा परिचय हुआ था। और आपको तो मैं से ग्वालियर तो वो कपड़े की मिल की एजेंसी आने भिन्न भिन्न मिलों की एजेंसी थी उनको, नागपुर की, ग्वालियर की, कलकत्ते की, तो वहाँ उसको कारोबार के हिसाब से आना जाना होता रहता था। पिछले सालों में जब जब वो बम्बई आए हैं तो सोनगढ़ आने का हुआ है। देखिए गुरुदेव तो जब वो आए थे गुजराती भाषा में प्रवचन करते थे, और एक दिन का प्रवचन गुजराती भाषा में सुनकर के भी अपना काम कर लिया। जो भाव पकड़ते हैं उसको भाषा की बाधा नहीं होती, ये इसका सबूत है। देखिए बहुत से गुजराती जन सुनते थे, बहुत जने सुनते थे उस वक्त, और कई सालों से सुनते थे, 30-30 साल से सुनते थे। जब वो पहले पधारे तो 30-30 साल तक सुनते थे, लेकिन योग्यता काम क्या करती है। गुजराती को प्राप्त नहीं हुआ और हिंदी भाषी को प्राप्त हो गया, क्या करें। उसमें गुजराती वाले की कोई इन्फ्लुएंस काम में नहीं आती है। जैसा कि हमने कहा ना कि भगवान महावीर के पास ये जो वेदांती थे इंद्रभूति, वो गंधर्व पर्णी को प्राप्त हुए, उतने संप्रदाय के जैनी लोग थे, लेकिन इसमें से कोई गंधर्व पद को प्राप्त नहीं हुए। वैसे गुरुदेव के पास गुजराती भाषी तो बैठे थे, लेकिन हिंदी वाले ले गए, माल तो ले गए, हिंदी वाले गुजराती वाले पड़े रहे, क्या करें। काम तो योग्यता से होते हैं। ज्ञानी की नजर में यानी भगवान की नजर में सब आत्मा है, न कोई जैन है न कोई अजैन है, न कोई गुजराती भाषी है न कोई हिंदी भाषी है, वहां तो सब आत्मा ही आत्मा है। पर जो आत्मा है वो अपना काम कर लेता है, स्वतंत्र है अपने काम करने में। काम करने में अपना अधिकार होता है, दूसरों का अधिकार नहीं होता। तो यहां कहते हैं कि वस्तु एकिला ध्रुव है, आत्मा वस्तु एकिला ध्रुव है, अपरिणामी है। द्रव्य वस्तु अपरिणामी है, द्रव्य ध्रुव है तो अपरिणामी है, परिणमती है सो पर्याय है, पर्याय परिणमती है, ध्रुव परिणमता नहीं है। द्रव्य वस्तु को परिणमन कैसा, ध्रुव को परिणमन कैसा, अगर ध्रुव को परिणमन होता तो ध्रुव ध्रुव रहता नहीं। यद्यपि उत्पाद और व्यय कर सहित है, अर्थात परिणतः, संस्कृत में टीका में जो शब्द पड़ा है वो परिणतः ऐसा लिया है, शब्द संस्कृत में पड़ा है। भाई यह तो बादशाह का घर है, क्या कहते हैं, ये जो भीतर में ध्रुव परमात्मा विराजमान है तो बादशाह का घर है, तीन लोक का बादशाह है। किसका, तीन लोक का बादशाह है। साधारण बादशाह के यहाँ भी ठीक होकर जाने का होता है, क्या कहते हैं, ये संसार के साधारण बादशाह होता है ना, वो स्टेट थे ना अलग अलग, ये ग्वालियर भी स्टेट था, तो इनके पास जाना हो तो ऐसे नहीं, जरा ठीक होकर जाना पड़ता है, यानी विवेक रखना पड़ता है, विनय रखना पड़ता है, इसे बात करने भी विनय विवेक रखना पड़ता है। तो फिर यह तो परमात्मा खुद, ये तो परमात्मा खुद है। तीन लोक का नाथ आत्मा खुद है, अपनी आत्मा कैसा है, तीन लोक का नाथ है। एकला ध्रुव ध्रुव है, पर्याय भले ही परिणमन में हो लेकिन ध्रुव में पर्याय नहीं है। कितना घूंटते हैं गुरुदेव, इतनी महिमा करते हैं। एक दरिद्री आदमी को 150 साल की जिंदगी जीने तक की संपत्ति कहीं से भी आ जाए तो उसका सारा शकल बदल जाता है कि नहीं बदल जाता है, हाँ, उसकी हाल चाल सब बदल जाती है, बातचीत की सब तौर बदल जाती है। पहले बात बात में दीनता करता था, तब उनको ये हो गया विश्वास कि मुझे किसी की परवाह नहीं है। 150 साल की संपत्ति दीनता को उड़ा देती है तो ये अनंत काल रहने वाली संपत्ति, उसमें दीनता कहाँ चली जाए कि पता ही नहीं चले वहां चली जाए, फिर उसका पता चलता नहीं है। ऐसे ज्ञानी मस्त होते हैं। ये स्वामी राम तीर्थ का एक दृष्टांत आता है, वो राम तीर्थ हो गए ना, वैसे पंजाब में हो गए, बहुत बड़े प्रोफेसर थे, एरिथमेटिक के बड़े प्रोफेसर थे, फिर वो सन्यासी हो गए थे या डॉक्टर थे, सन्यासी हो गए थे, हिमालय में चले गए थे। फिर वो मस्त, वो लोग मस्त हो जाते हैं अपने आप में। फिर अमेरिका गए थे, वो बहुत मस्त में वहाँ घूमते थे, कोई समुद्र के किनारे पर अपने हाथ का ये उसी का बना करके सोए हुए थे अपनी मस्ती में। क्या उसके पास कोई परिग्रह नहीं था कि वो उसको माथे पे रखे, कुछ ऐसी कोई चीज नहीं थी आराम करने के लिए, तो हाथ ऐसा रख करके सो गए थे। तो इसकी ख्याति व्याति हुई होगी, किसी की पहचान जान पहचान हो गई होगी, किसी ने बात किया कि बहुत बड़ा महात्मा है भारत का, हिंदुस्तान का, मिलने लायक आदमी है, पढ़े लिखे हैं लेकिन बात कम करते हैं लोगों से। अच्छा ऐसी बात है, तो अमेरिका ने प्रेसिडेंट ने बोला तो बुलाओ उसको इधर। फिर आदमी गया वहाँ, प्रार्थना किया, साहब आपको व्हाइट हाउस में बुलाते हैं, प्रेसिडेंट साहब आपको व्हाइट हाउस में बुलाते हैं, पधारो। तो उसने बोल दिया कि बोल देना हम हमारी मस्ती में पड़े हैं, अभी नहीं आएंगे, जब हमारा जी चाहेंगे तो आएंगे वरना हम नहीं आएंगे। ठीक, क्यों? कि दीनता उसको होती है। दृष्टांत में क्या सबक है कि दीनता तो उसको होती है जिसको अपेक्षा वृत्ति होती है, जिसको अपेक्षा नहीं उसको दीनता भी नहीं, वो उपेक्षा करेगा। अपेक्षा नहीं करने वाला सारी दुनिया का उपेक्षा करेगा कि हमें किसी से क्या लेना देना है, कि हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं है, हमारी शांति हमारा आनंद यही हमारा खुराक है, यही हमारा स्वाद है, बस इसमें हम मस्त हैं। जैसे सिद्ध परमात्मा को किसी की अपेक्षा नहीं है, वैसे ध्रुव आत्मा को, अपनी आत्मा को भी किसी की अपेक्षा नहीं है। ऐसी श्रद्धा सुखदाई है, ऐसी श्रद्धा सुखदाई है। यह परमात्मा प्रकाश है। क्या है यह परमात्मा प्रकाश है? एक समय की पर्याय परमात्मा नहीं है। यहाँ क्या कहते हैं कि एक समय की पर्याय परमात्मा नहीं है तो विनष्ट हो जाती है। यहाँ तो द्रव्य परमात्मा है, यहाँ तो द्रव्य परमात्मा है, ये भाव अभाव से रहित है। भाव अभाव से रहित है माने कि उत्पाद भी ऐसे रहित है, तो भी द्रव्यार्थिक नहीं से उत्पाद व्यय से रहित है, पर्यायार्थिक नहीं से उत्पाद व्यय से सहित है, तो भी द्रव्यार्थ द्रव्यार्थिक नहीं से उत्पाद व्यय से रहित है। यह आत्मा ध्रुव ध्रुव एक रूप चिदानंद है, परिणमन रहित है, एकला वीर्य पिंड प्रभु है, मैंने अनंत ताकत का धनी है, उसमें कोई कम ताकत नहीं है। इसके अस्तित्व को कोई मिटा नहीं सकता, अपनी हस्ती को कोई मिटा नहीं सकता, और अपनी मौजूदगी को रखने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं होती। ऐसा आत्मा एकिला चैतन्य का दल है, एकिला चैतन्य का दल है, जैसे समुद्र में पानी का अनंत दल भरा है, ऐसा आत्मा अनंत शक्ति का दल है, पूर है। क्या क्या निकालते हैं गुरुदेव, पूर है ऐसा कहते हैं। पूर मैंने क्या कि जिसको रोक लगाया नहीं जा सकता उसको पूर कहते हैं, जिसको रोग लगाया नहीं जा सकता। जैसे सूर्य है उसमें प्रकाश में उसका प्रकाश का पूर निकलता है उसमें से, उसको कौन रोक सकता है, सूर्य के प्रकाश को कोई रोक सकता है निकलने में। आज सूर्य को बंद कर दो, आज सूर्य को प्रकाश ही नहीं हुए ऐसा बना दो, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ये आत्मा भी चैतन्य पूर है, कैसा है, चैतन्य का पूर है, ये रस भरा है इसमें, गुरुदेव की वाणी में ये आत्म रस भरा है। तो अनेक अनेक विशेषण से वो अपना रस को प्रकट करते हैं वाणी में। पूर है जिसमें से अनंत केवल ज्ञान चला आवे, अनंत काल तक अनंत केवल ज्ञान की पर्याय चली आवे, ऐसा ध्रुव आत्मा है। और एकला आनंद का पिंड है, एकला आनंद जो ध्रुव है वो परिणमन रहित है, आनंद की शक्ति भी उसमें अपार अपार है। जो उपयोग अपने सामर्थ्य को देखने को अंतर्मुख हो जाता है उसकी हालत क्या होती है कि वहां वो थंब जाता है। ऐसा कोई आश्चर्यमयी पदार्थ है, अद्भुत आश्चर्य से भरा है कि देखने वाले को वहां स्थिर हो जाना पड़ता है, स्थिर हो जाना पड़ता है, तो वहां से खिसक नहीं सकता। ये भगवान का भी ऐसा ही है, समव शरण में भगवान साक्षात जीवंत स्वामी जो विराजमान होते हैं तो देखने वालों वहां से अपनी नजर नहीं हटा सकते। क्या होता है, ये हालत वो बन जाती है कि देखने वाला वहां से अपनी नजर को हटा नहीं सकता, उसको ये लगता है कि मैं देखते ही रहूं, हटू ही नहीं यहां से। ऐसा भगवान का कोई जो समचतुरस्र संस्थान है और अंग उपांग इतने सुंदर है, इतने तेजस्वी है, इतने मनोहर है, मनोज्ञ है कि नजर वहां जाती है तो हट सकती नहीं। ऐसे ये ध्रुव परमात्मा भी ऐसा है, कि जो उपयोग उसको देख को देखने को जाता है तो कुछ देर के लिए वहां थम जाता है, वहां से हट नहीं सकता। ऐसा कोई महापदार्थ है भीतर में कि जिसकी महिमा भगवान की दिव्य ध्वनि हमेशा हमेशा गाती रहती है। अभी भी बीस तीर्थंकर तो मौजूद है ने महाविद्य क्षेत्र में, बीस विद्यमान तीर्थंकर है, तो उसकी वाणी में निरंतर ये भगवान आत्मा की महिमा आती रहती है। द्रव्यार्थिक नय अर्थात जिसका प्रयोजन द्रव्यार्थिक नय माने जिस ज्ञान के अंश का प्रयोजन, ये प्रमाण ज्ञान का एक अंश को नय कहते हैं, इसका प्रयोजन एकिला ध्रुव को जानने का है। क्या एकिला ध्रुव को जानने का प्रयोजन है? जो ज्ञान का पर्याय ध्रुव को जानना चाहता है ऐसे ध्रुव में परिणमन नहीं है। कैसा ध्रुव को जानते हैं कि उस ध्रुव में परिणमन नहीं है। अपनी शक्ति की संपत्ति ध्रुव है। जैसे आदमी जरावस्था में कमजोर हो जाता है, चल सकता नहीं है, बैठ सकता नहीं है, बोल सकता नहीं है, ऐसा होता है ना, ऐसा पदार्थ में आत्मा में ऐसा कभी नहीं होता। ये ध्रुव संपत्ति है, अनंत काल तक वैसी की वैसी अनंत सामर्थ्य उसमें रह जाती है, उसमें कोई डेप्रिसिएशन लगता नहीं है। विश्व में मशीनरी कैसी भी हो उसमें लंबे काल में डेप्रिसिएशन आता है, घसारा लगता है, पार्ट बदलना पड़ता है या नहीं बिठानी पड़ती है, लेकिन आत्मा में ध्रुव परमात्मा में ऐसा नहीं है। ये आधारभूत तत्व है, हमको ये आधारभूत तत्व है, उसका आधार मिलने से फिर कोई आपत्ति या विपत्ति रहती नहीं है, खत्म हो जाती है सब। तो कहते हैं कि ये ध्रुव में परिणमन नहीं है, या आत्मा अनंत गुण का पिंड पड़ा है, निर्मल पर्याय जो होती है शायद सम्यकत्व की श्रद्धा की पूर्ण शुद्ध पर्याय होती है, चारित्र में यथाख्यात चारित्र की पर्याय हो, सो भी वस्तु में कहाँ है? कैसे है कि वस्तु में वो नहीं है? शायिक श्रद्धान की पर्याय नहीं, केवल ज्ञान की पर्याय नहीं, अनंत परमानंद की भी पर्याय नहीं, यथाख्यात चारित्र की भी पर्याय उसमें नहीं है। तो संसार पर्याय का तो सवाल रहता नहीं है। क्या कहना चाहते हैं गुरुदेव? कि जिस संसार के एक प्रसंग में, क्या एक अंश में, एक प्रसंग तो संसार का एक अंश है, पर एक प्रसंग में हम पूरे के पूरे डूब जाते हैं, क्या होता है, क्या हालत है संसार में जीव की? कि पूरा का पूरा उसमें लीन हो जाता है, डूब जाता है। तो श्री गुरु अपने स्वरूप को बताते हैं कि देख, जब केवल ज्ञान आदि परमानंद की पर्याय नहीं है तो तेरे संसार की पर्याय का तो सवाल ही कहां उठता है। तू कहां पकड़ के संसार को पकड़ करके बैठ गया? किसको पकड़ा तूने और पकड़ के हैरान हैरान हो गया? देख तेरे में तो केवल ज्ञान ही देख की पर्याय भी नहीं है, ऐसा तू ध्रुव है। इससे भी महान है, कहने का मतलब है इससे भी महान है। तो संसार पर्याय का व्यय होता है, कैवल्य यानी मोक्ष का उत्पाद होता है, किंतु दोनों ध्रुव में नहीं है। ये दोनों ध्रुव में नहीं है, दोनों से निरपेक्ष है हमारा स्वरूप, ऐसा कहते हैं। यह अनादि अनंत भगवान अंतर ध्रुव वस्तु को जिनवर देव ने देह में रहने पर भी जान लिया है, देह का संयोग होने पर भी जान लिया है। ऐसा नहीं है कि देह चला देह छूट जाएगा तब जानेंगे, देह छूट जाएगा निर्वाण पद को प्राप्त हो जाएगा, सिद्धालय में पधारेंगे जब ध्रुव परमात्मा का दर्शन होगा, वो बात नहीं है। देह होते हुए भी जान लिया है, तो कहने का मतलब ये होता है कि तुमको भी अपने देह में भगवान का अपने आत्मा का दर्शन हो सकता है। जिनवर देव ने देख लिया है तो तू भी देख सकता है। पूरे द्रव्य को एक समय में देख लिया है ऐसा कहते हैं। ये द्रव्य की दृष्टि हुई, सम्यक दृष्टि, मैंने ये द्रव्य दृष्टि, द्रव्य की दृष्टि हुई कि द्रव्य सिद्ध अवस्था रूप केवल ज्ञान रूप परिणमता है। ये दृष्टि होते ही ऐसी एक योग्यता का जन्म होता है कि उसको सिद्ध अवस्था और केवल ज्ञान होना ही है, नहीं होवे ऐसा बनता नहीं है। ये भगवान का वचन है। हमारे तो कोई अच्छी कंपनी इश्यू निकालती है, हाँ, तो हम पैसे भर देते हैं ना। आजकल ये शेयर मार्केट का बहुत चला, हाँ, क्रेज बन गया सारे। अच्छी कंपनी में विश्वास हम रखते हैं, हमारे पैसे भर देते हैं, बैंक में से निकाल कर भेज देते हैं, भगवान के वचन पर विश्वास नहीं करेंगे क्या, हाँ? क्या बात है अजीत कुमार, हाँ? विश्वास होना चाहिए भगवान के वचन पर, श्री गुरु के वचन पर विश्वास होना चाहिए कि तुझ अगर द्रव्य दृष्टि हो गई तो भगवान के वचन पर विश्वास आता है, उसमें आधार होता है अपना द्रव्य, दृष्टि को आधारभूत होता है अपना द्रव्य, आधारभूत होता है अपने को अपने द्रव्य की प्रतीति आती है। विश्वास भीतर में से पैदा होता है कि मैं अल्पकाल में सिद्ध होने वाला हूं, क्या अपने मोक्ष की प्रतीति आती है। गुरुदेव तो इससे आगे बढ़कर के एक बात कहते थे, क्या सुनने वाले में कोई ऐसे पात्र जी भी आते थे, सुपात्र जी भी आते थे और गुरुदेव की नजर में वो आ जाते थे। क्या कहते थे वे कि भले ही द्रव्य दृष्टि नहीं हुई हो, श्यामलाल जी, भले ही द्रव्य दृष्टि नहीं हुई हो, किंतु पात्रता में ये बात सुनने में मीठी लगती है, रस आता है, भगवान आत्मा की बात रुचि से प्रीति से सुनने में आती है। तो हमारे गुजराती में एक खास इसका शब्द है कि मोक्ष का भणकार उसको आता है। आपको भी भणकार कहते हैं हिंदी में, भणकार आता है। भणकार मैंने क्या, अंदर से कोई आवाज आती है उनको, ऐसा लगता है, महसूस होता है, एहसास होता है, अंदर से आवाज आती है कि अरे आत्मा, तुझे तेरा स्वरूप की ये बात में रुचि प्रीति होती है तो अरे आत्मा, तू भी बहुत अल्पकाल में मोक्ष तेरा होने वाला है, ऐसी एक भणकार मुमुक्षुता में आ जाती है। क्या ज्ञानी तो बाद में होंगे लेकिन मुमुक्षुता में ये ऐसा परिणमन होता है। अब मेरा एक प्रश्न है, आप तो प्रश्न दोपहर को पूछते हो, कभी कभी मेरी भी बारी तो होनी चाहिए। हाँ, ये प्रश्न है कि ऐसा भणकार जब किसी जीव को आता है भीतर में से, तो ये कौन से कर्म का उदय में से ये परिणाम हुआ बताइए। लोग ये कहते हैं कि सम्यक दर्शन के पहले अनुदय परिणाम नहीं होते, मोक्ष मार्ग के जो परिणाम है वो अनुदय परिणाम है। और पारिणामिक भाव में जाता है, कौन से भाव में है? ये उदय में नहीं, उपशम में नहीं, क्षयोपशम में नहीं, क्षायक में नहीं, ये भव्यत्व पारिणामिक बोलता है। क्या बोलता है, कौन बोलता है? पारिणामिक भाव बोलता है। ये पारिणामिक भव्यत्व में से आवाज आई कि तू भव्य हो, तेरा मोक्ष होने वाला है, ही अल्प काल में तेरा मोक्ष होने वाला है। ये ध्रुव आत्मा की बात ऐसी है, ध्रुव आत्मा भी पारिणामिक है, वो तो शुद्ध पारिणामिक है, लेकिन शुद्ध पारिणामिक प्रत्यक्ष होता है तब अनुदय परिणाम होता है। ये भव्यत्व अशुद्ध पारिणामिक है, उसमें से ही आया खाई में से आया, अशुद्ध पारिणामिक में से आया। ये भव्यता की आवाज है, ये भव्यत्व पक गया, समीप आ गया, नजदीक आ गया, तो सम्यक दर्शन द्रव्य दृष्टि पा करके अपने परमात्मा का साक्षात्कार प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएगा। क्या कहते हैं गुरुदेव अपने प्रवचन में कि यह द्रव्य की दृष्टि हुई कि द्रव्य अपना स्वरूप सिद्ध अवस्था रूप केवल ज्ञान रूप परिणमने वाला है। सिद्ध स्वरूप का पिंड ही आत्मा है। द्रव्य दृष्टि में तो क्या लगता है, वो सोगानी जी ने लिया है अपनी चर्चा में कि मैं तो अभी ही सिद्ध पद स्वरूप हूं, अभी ही मेरे सिद्धालय में विराजमान हूं। जो ऊपर सात राजू सारे लोक के शिखर पर जो सिद्धालय है वो तो 14वां गुण स्थान पूरा होगा तब वहां जाना होगा। क्या 14वां गुण स्थान पर्याय में होगा और आकाश का क्षेत्र मनुष्य लोक में मध्य लोक में से सिद्धालय में ऊपर जाना होगा एक समय में, तो सभी कार्य पर्याय का पर्याय में होगा। क्या पर्याय का कार्य पर्याय में होगा? मेरे में तो पर्याय ही नहीं है, मैं तो अभी ही सिद्धालय में विराजमान हूं। ऐसे लेते थे, बहुत इनकी चर्चा भी बहुत भाव से आती थी, बहुत रस भरा था इसमें। जिसने सुनी होगी तो बस सुनते ही रहो, ऐसी चर्चा चलती थी। तो चर्चा चलती थी, घंटों तक चलती थी, तो सुनते ही रहो। ये ध्रुव परमात्मा को घूंट घूंट करके वो अपने भाव निकालते थे। अर्थात वस्तुता से सीध स्वरूप ही आत्मा है। आत्मा मैंने कोई थर्ड पर्सन नहीं है, वस्तुता से तो मैं सिद्ध स्वरूप ही हूँ, मैं ही सिद्ध स्वरूप हूँ। पर्याय में सिद्धपना होता है, अर्थात वस्तुता से सिद्ध स्वरूप ही आत्मा है तो उसकी अवस्था में सिद्धपना प्रकट होता है। द्रव तो ध्रुव ध्रुव अनादि अनंत सिद्ध है, उसमें नया सिद्धपना प्रकट नहीं हुआ है, वो तो अनादि अनंत सिद्ध है। परमात्मा स्वरूप ही है, उसमें अनंत परमात्मा विराजते हैं। हमारे स्वरूप में परमात्म पद की सिद्ध पद की पर्याय जो है, ऐसा अनंत परमात्मा विराजमान है। एक परमात्मा नहीं है हमारे में, क्या जैसे हमारा उपयोग कभी सिद्धालय में भी जा सकता है, हम सिद्ध क्षेत्र में जाते हैं ना, अपने ये सोनागिर तो बहुत नजदीक में है, यहाँ से सिद्ध क्षेत्र है ना, सारा जो जितनी भी ये 45 लाख योजन मनुष्य क्षेत्र है, त्रस नाड़ी है, ये 14 ब्रह्मांड में पूरी 45 लाख योजन चौड़ी जो है, सभी क्षेत्र से जो मनुष्य आत्मा है, मनुष्य लोक में से सिद्ध पद को प्राप्त हुए हैं, तो पूरी जो सिद्ध शिला है 45 लाख योजन बराबर मां पूरे क्षेत्र में अनंत 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 सिद्ध परमात्मा, अनंत घनिष्ठ स्वसंवेदन के साथ विराजते हैं। नमो, अपन नमस्कार मंत्र में लेते हैं ना, नमो त्रिकालवर्ती सर्व सिद्धानम, जितने भी 3 लाख तीन काल तीन लोक में तीन काल में से जो भी होने वाले हैं सभी को हम नमस्कार करते हैं स्मरण में लेकर के। तो हम सिद्ध क्षेत्र में यात्रा को जाते हैं तो उसी वक्त हमारा उपयोग वहां चला जाता है, क्या ऐसे तो हमारे ऊपर भी अनंत सिद्धालय सिद्धों विराजमान है, क्योंकि मनुष्य लोक में है ना, हम त्रसनाड़ी में सब त्रस जीव के ऊपर सिद्धालय सिद्ध परमात्मा विराजमान है। लेकिन जो नजदीक के काल में इस 24वीं में जो गए, ये एक नजदीक का इतिहास है हमारे पास, अनंत काल का इतिहास नहीं मिलता, आगम में भी नहीं मिल सकता, क्योंकि आगम सीमित है और अनंत काल असीम है। इसलिए तो जो पिछला इतिहास है यहाँ से स्मरण ताजा होता है, तो यहाँ से ये नंग अनंग आदि करोड़ों मुनि 5.5 करोड़ मुनि के आत्मा ऊपर विराजमान है, तो हमारा उपयोग वहां जाता है, क्या हमारा उपयोग वहां जाता है तो अनंत सिद्धों का दर्शन होता है वहां, क्या होता है इसमें अनंत सिद्धों का वहां दर्शन हमें होता है, और भीतर में हम हमारे ध्रुव परमात्मा में जाते हैं। अगर हमारा उपयोग पर सीमित करके भीतर में आता है, पर भीतर में आता है तो वहां क्या दिखता है कि अनंत परमात्मा विराजमान है, वहां भी अनंत पर्याय निकलेगी ना, परमात्मा पद की सिद्ध पद की अनंत परमात्मा की पर्याय वहां पड़ी है, सामर्थ्य रूप पड़ी है, लेकिन अव्यक्त है, उसको व्यक्त रूप में हम भाते हैं, भावना भाते हैं और उसका दर्शन करते हैं, तो भीतर में भी अनंत सिद्ध परमात्मा का दर्शन होता है। तो देखिए बाहर में भी अनंत सिद्ध परमात्मा का दर्शन होता है और अंतर में भी अनंत सिद्ध परमात्मा का दर्शन होता है, और द्रव दृष्टि होती है तो सभी जीवों में सिद्ध परमात्मा का दर्शन होता है, जहाँ देखो वहाँ
शुद्ध परमात्मा हूँ, शुद्ध परमात्मा है और कहीं नहीं, और दूसरी चीज नजर आती ही नहीं। हमारे अन्य मत में तो पद स्मरण सुना होगा आपने, तो हरता फरता प्रगत हरि देखूं रे, ऐसा पद आते हैं हमारे, वो हरते हैं फिरते हैं कहीं भी, वो हरि को देखता है, वो हरि को ही देखता है, दूसरा उसकी नजर में कोई आता ही नहीं। तो ये सब बात यहाँ से निकली है, द्रव दृष्टि में से सब निकली है। जो द्रव दृष्टि में ऐसा हो जाता है, यही सही सच्ची दृष्टि है, यही सत्य दृष्टि है, यही परमात्मा को दर्शन करने वाली दृष्टि है, और इसी दृष्टि को प्राप्त करने के हेतु ये सभी शास्त्रों की रचना हुई है। कहते हैं कि हमारा ध्रुव परमात्मा में दूसरे अनंत परमात्मा विराजते हैं, अनंत पर्याय निकलेगी सिद्ध पद की। वस्तु पूरा विकराग पिंड है, उसको भगवान परमात्मा अरिहंत तीर्थंकर देव ने देख लिया है। यह द्रव यह वस्तु उत्पाद व्यय रहित है, ऐसा देख लिया है। जानने वाली भले ही पर्याय है, लेकिन जानी हुई वस्तु जो ध्रुव है, उसको विकराग निर्विकल्प आनंद रूप समाधि द्वारा कैसे देखा जाया जाता है? तो विकराग निर्विकल्प आनंद रूप समाधि के बल से, उस समाधि द्वारा तद्भव मोक्ष के साधक, उसी भाव में दूसरा भाव जिसको होने वाला नहीं है, ऐसे तद्भव मोक्ष के साधक, ऐसे जिनवर देव ने देह में भी जान लिया है, अपने देह में विराजमान ऐसे परमात्मा को, ध्रुव परमात्मा को जान लिया है। ऐसा नहीं है कि जब मोक्ष होगा, निर्वाण को प्राप्त होगा तभी जानेंगे, ऐसा नहीं है। अभी जानेंगे, अभी जान सकते हैं, भगवान ने जाना है तू भी जान सकता है, ऐसा कहते हैं। यहाँ ने यहाँ जान लिया है, कहीं और जगह जाना पड़ा नहीं। धर्मदास जी श्लोक हुए ना अपने, वो अपनी जिंदगी में लिखते हैं, मैं श्लोक की दीक्षा ले ली थी अज्ञान दशा में, क्या अज्ञान दशा में श्लोक की दीक्षा ले ली थी, हजारों तो उपवास किए थे, बहुत तपस्या की थी, सैकड़ों बार सम्मिलित शिखर की यात्रा की थी, और मुझे उसका अभिमान भी बहुत हो गया था। क्या लिखते हैं अपना दुर्गुण भी लिखते हैं ना, कि मुझे उसका अभिमान भी बहुत हो गया था, मैं तो सुलक, मैं तो तपस्या करने वाला, मैं तो यात्रा करने वाला। उनके जो देवेंद्र कीर्ति उनके गुरु थे, इसी एरिया में हुए हैं, अगर मध्य प्रदेश में ही हुआ होता है, कारण नहीं, कारण जाना है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में है कारण जाना है। उसके गुरु ने बोला कि तुमने बहुत यात्रा की, वो तो शुद्ध क्षेत्र है, शुद्ध परमात्मा का दर्शन किया क्या नहीं किया? शुद्ध परमात्मा का दर्शन तो नहीं हुआ है। तो क्या बोले, अरे तुम्हें शुद्ध क्षेत्र में जाकर के भी शुद्ध भगवान का दर्शन नहीं किया, क्या तो अंधा है अंधा? क्या बोले, पात्रता पक गई थी उसकी, श्री गुरु को कसाई नहीं आई थी, अंधा कहने में कोई कसाई नहीं आई थी, फिर भी अंधा क्यों कहा? करुणा आई थी, बहुत करुणा आई थी, तो उसको जरा जगाने की जरूरत थी, उसका जो अभिमान था ना तो अभिमान ऐसे उतरता है, तो समझे कि इसका अभिमान का उतारण करने का यही तरीका है। तो चोट लग गई, अरे मैं तो अपने को बहुत मानता हूँ बड़ा। ये कहते हैं गुरु तो कहते कि तू अंधा है। फिर गए वो समय शिखर, फिर आए, नहीं देखा परमा। अरे तू अंधा है, तेरे परमात्मा को नहीं देखता है, तेरे सिद्ध परमात्मा को नहीं देखता है। बस हो गई दृष्टि उनकी, ज्ञान दिशा की प्राप्ति हुई। फिर ये सम्यक ज्ञान दीपिका आदि काफी उसकी जो रचना है बहुत मस्ती भरी रचना है, बहुत मस्ती है। ऐसा है कि मोक्ष होगा तभी जानेंगे, यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ ने यहाँ जान लिया है, ये ध्रुव है ऐसा जान लिया है भाई, जिसमें परिणाम नहीं है। गुरुदेव कहते हैं कि ये कोई गजब की बात है, जिसमें परिणाम नहीं है ये कोई गजब की बात है। द्रव परमात्मा ऐसा का ऐसा त्रिकाल पिंड है, ऐसा वितराग समाधि के बल से अनुभव कर तुम हे शिष्य, तुम ऐसा भी वितराग समाधि के बल से अनुभव कर, ऐसा शिष्य को कहते हैं। ये जो योगिंद्र आचार्य देव है, उसने अपने कोई शिष्य को ये शास्त्र जो है वो संबोधित करते हुए लिखा है, प्रभाकर भट्ट करके हैं। ये प्रभाकर भट्ट को कहते हैं कि ये शिष्य तुम ऐसे जहाँ अनुभव कर, ऐसे ये आचार्य महाराज हमको कहते हैं कि तुम ऐसे अनुभव कर और अपने परमात्मा का दर्शन कर।
अभी आपने श्री